हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अमन ने तारा को बिना किसी विरोध के देखा और वो उस पर हावी होने लगा। उसने जल्दी ही तारा के कपड़े उसके शरीर से उतारने शुरू कर दिए। हालांकि दिन की शुरुआत थी, सुबह का समय ही था, लेकिन अमन और तारा फिर से एक दूसरे के प्यार में डूबने को तैयार थे। तारा अमन को रोकना चाहती थी, लेकिन जानती थी कि जब अमन उसके बेहद करीब होता है, उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। तारा के शरीर से आती मीठी खुशबू, उसके बाल, उसकी सादगी और खूबसूरती उसे अत्यंत मनमोहक बनाती थी। अमन उसकी खूबसूरती में खो जाना चाहता था। जल्दी ही अमन ने तारा को गोद में उठाया, अपने कमरे के शानदार बिस्तर पर ले गया और उसके बगल में लेटकर उसके बालों को चूमते हुए गर्दन पर किस करने लगा। वो तारा में पूरी तरह खो जाना चाहता था कि तभी उसे अमरेंद्र जी की आवाज़ सुनाई दी। अमन बेटा, कहाँ हो? जल्दी आओ। अमरेंद्र जी अमन को बुला रहे थे। अपने पिता की आवाज़ सुनकर अमन को बुरा लगा, क्योंकि वो तारा और उसके बीच किसी तरह का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अमन ने दरवाज़ा बंद कर रखा था और अपनी जादू की शक्तियों से कमरे की आवाज़ों को बाहर जाने से रोक दिया था, लेकिन बाहर से आने वाली आवाज़ को रोकना भूल गया था। अमन के पिता उसे बुला रहे थे। तारा ने अमन से कहा, हमें ये सब रात में करना चाहिए, अभी पिताजी की बात सुननी चाहिए। लेकिन अमन गुस्से से तारा को घूरने लगा और बोला, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम जानती हो ना, तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हारा खूबसूरत शरीर मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। मैं आगे बढ़ चुका हूँ, अब मुझे रोकना नामुमकिन है। अगर पिताजी बुला रहे हैं तो बुलाने दो, मैं तुम्हें प्यार करने के बाद ही जाऊंगा। अमन के ये शब्द सुनकर तारा हैरान रह गई, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकी। अमन ने खुद को कपड़ों से मुक्त किया और फिर से तारा के साथ जोरों शोरों से संबंध बनाना शुरू कर दिया। तारा अमन के साथ खुश थी, लेकिन उसके दिल में हल्की सी कसक थी, क्योंकि अमन का ये व्यवहार बिल्कुल ठीक नहीं था। 3-4 घंटे तक तारा को प्यार करने के बाद अमन उठा, नहाया धोया, कपड़े पहने और नीचे चला गया। तारा उसी तरह बिस्तर पर लेटी रही। अमन ने उसे सावधानी से प्यार किया था, फिर भी तारा के दिल में अजीब सी आशंका थी। तभी तारा को एहसास हुआ कि सोनल उससे मन ही मन बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अमन के साथ संबंध बनाने के कारण तारा सोनल से बात नहीं कर पाई थी। अमन के जाने के बाद तारा ने मन ही मन सोनल से बात करना शुरू किया। बहुत देर से अमरेंद्र जी जीजा जी को आवाज़ लगा रहे हैं, जीजा जी को नीचे भेज दो, उन्हें शायद कुछ ज़रूरी बात करनी है। तारा ने भारी मन से कहा, वो नीचे जा चुके हैं, वो आ रही है। सोनल ने कहा, तुझे भी जल्दी नीचे आ जाना चाहिए, क्योंकि काली शक्तियों का मालिक अमित किसी भी पल आने वाला है और हो सकता है कि वो उस बदसूरत बूढ़ी मालिका को भी ले आए, इसलिए तुझे नीचे मौजूद रहना चाहिए। तारा ने कहा, मैं नहा कर आती हूँ, तो सारा काम संभाल ले। तारा के नहाने का नाम सुनते ही सोनल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो सोचने लगी कि अगर तारा की जिंदगी में इतना प्यार हो सकता है तो उसकी जिंदगी में क्यों नहीं। अक्षत तो उससे प्यार करता है, तो वो उसके पास क्यों नहीं जा सकती? उसे अक्षत के पास जाना चाहिए। जब तक तारा पृथ्वीलोक पर है, वो अक्षत के साथ रह सकती है, उससे संबंध बना सकती है, और वो तो अक्षत को चाहने भी लगी है। सोनल के मन में इस तरह के विचार आने लगे। उसने सोच लिया कि वो हर रात अक्षत से मिलने जाएगी। जल्दी ही तारा ने खुद को तैयार कर लिया। उसने सुबह गुलाबी रंग के कपड़े पहने थे। वो 10-11 बजे उठी थी। अब चूंकि वो अमन के साथ संबंध बना चुकी थी, इसलिए उसने सफ़ेद रंग का खूबसूरत फ्रॉक सूट पहना था। इसमें हल्के मोतियों का काम था, ये बहुत सादा लेकिन खूबसूरत था। तारा उसमें परियों जैसी लग रही थी, मानो परियों की रानी पृथ्वी पर आ गई हो। तारा जैसे ही नहाकर तैयार होकर नीचे आई, अमन उसे बुरी तरह घूरने लगा और कुछ देर तक उसे देखता रहा। तारा की खूबसूरती दिन ब दिन बढ़ रही थी और उसमें जिन्नातों के वंशज के होने के कारण वो और भी खूबसूरत होती जा रही थी। मानो चांद, तारे, आकाश, सूर्य सब कुछ तारा के सामने फीके पड़ गए हों। उसकी जैसी खूबसूरत इस दुनिया में, यहाँ तक कि तीनों लोकों में कोई नहीं थी। करिश्मा जी तारा को देखकर उसके पास आईं और उसके सिर पर हाथ रखकर बोली, अरे बेटी, तू जाग गई, कैसी हो? ठीक तो हो ना? तारा हल्का सा मुस्कुराई। उसके मुस्कुराते ही ऐसा लगा मानो बंगले में चारों ओर खूबसूरत दिए जल उठे हों। वो लोग बात ही कर रहे थे कि काली शक्तियों का मालिक अमित वहां आ गया। उसके साथ उसके दफ्तर के 1-2 कर्मचारी और मालिका भी थी। सोनल और तारा ने मालिका को देखते ही एक दूसरे का मुंह देखा। उन्हें पूरा यकीन था कि अमित अकेला नहीं आएगा, और यही हुआ। अब उन्हें समझ आ गया था कि उन्हें कितना सावधान रहना होगा। मालिका को देखकर करिश्मा को समझ आ गया कि मालिका से ही अमित की शादी होने वाली है। क्या इसी से तुम शादी करने वाले हो? अमित हल्का सा हंसते हुए बोला, नहीं आंटी जी, आप गलत समझ रही हैं, मेरी शादी इनसे नहीं होने वाली है, बल्कि उस लड़की से। उसने पीछे खड़ी एक लड़की की ओर इशारा किया। तारा, सोनल और करिश्मा ने जब उस लड़की को देखा तो वो हैरान रह गए। हल्के रंग के फ्रॉक सूट में सर झुकाई हुई खड़ी वह लड़की कोई और नहीं बल्कि धरा थी, वही लड़की जिसके गुण तारा में आए थे। तारा, सोनल और बाकी सबकी नज़र अमित के पीछे खड़ी धरा पर पड़ते ही तारा बहुत हैरान हो गई। वो धरा को अच्छी तरह पहचानती थी। धरा का एटीट्यूड, उसकी सोच, सब कुछ तारा में समाया हुआ था। तारा जो भी भावनाएं महसूस करती थी, वो धरा की वजह से ही करती थी। अब धरा को काली शक्तियों के मालिक के साथ देखकर तारा बहुत हैरान हो गई थी। धरा की आंखें देखकर तारा को समझ आ गया कि धरा अपने वश में नहीं है। अमित ने अपनी काली शक्तियों से उसे अपने वश में कर लिया होगा। तारा को बहुत दुख हुआ। पिछली बार जब तारा धरा से मिली थी तब धरा एक विधायक के बेटे की गिरफ्त में थी और आज यहाँ इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। अमित ने तारा को धरा को इस तरह देखते हुए देखा तो थोड़ा हैरान हुआ और फिर गला साफ करते हुए बोला, क्या बात है भाभी, क्या आपको मेरी पसंद देखकर खुशी नहीं हुई? क्या आपको धरा पसंद नहीं आई? अचानक अमित ने तारा को निशाना बनाया तो तारा पूरी तरह हैरान हो गई। सब लोग तारा की ओर देखने लगे। सोनल ने तारा को कोहनी मारी जिससे तारा होश में आई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत ही प्यारी है। क्या नाम है इनका? बहुत ही प्यारी है ये। तारा तुरंत धरा के पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, धरा जी आइए मेरे साथ, मैं आपको अपना कमरा दिखा देती हूँ। जब तक आप लोगों की शादी नहीं हो जाती तब तक आपको अलग अलग कमरों में रहना होगा। तारा धरा को अपने साथ ले गई क्योंकि वो धरा से अकेले में मिलना चाहती थी और उसके बारे में सब कुछ जानना चाहती थी कि आखिर धरा काली शक्तियों के मालिक अमित के साथ क्या कर रही है। मलिका को देखकर करिश्मा को अच्छा नहीं लग रहा था। उसे अजीब सी फीलिंग आ रही थी लेकिन वो अपनी फीलिंग किसी को नहीं कह पा रही थी। वो जानती थी कि अगर उसने अपने पति अमरेंद्र को अमित और मलिका के बारे में बताया तो वो उस पर गुस्सा हो सकते हैं। वो अपने पति की आंखों में पश्चाताप देख रही थी और जानती थी कि अगर उसने उसके पश्चाताप में आने की कोशिश की तो उसे बुरा लग सकता है और वो उसे फिर छोड़कर जा सकते हैं। करिश्मा कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए उसने भारी मन से मलिका को एक गेस्ट रूम दिखा दिया और कहा, आज से एक हफ्ते तक आप सब यहीं रहेंगे, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ बताइएगा।
वो जल्दी ही अपने कमरे में चली गई क्योंकि वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और उसे दबाने के लिए वो अपने कमरे में इधर उधर घूमने लगी। तभी अमरेंद्र जी वहाँ आ गए और करिश्मा को इतना परेशान देखकर समझ गए कि वो क्यों परेशान है। वो तुरंत करिश्मा के पास गया, घुटनों के बल बैठ गया और बोला, करिश्मा जी, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इस वक्त आप पर क्या बीत रही है। आप जिस औरत का नाम तक नहीं सुनना चाहती थी उसके बेटे से अपनी आंखों के सामने शादी करवा रही हैं। आपका दिल वाकई बहुत बड़ा है और आप नहीं जानती कि आपने अमित को इस घर में रहने की जगह देकर मुझ पर कितना बड़ा उपकार किया है। ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। करिश्मा हैरानी से अमरेंद्र जी की ओर देखने लगी। क्या ये वही अमरेंद्र जी हैं जो पहले कितने निडर और साहसी हुआ करते थे? माफ़ी मांगना तो दूर, किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करते थे, लेकिन आज वक्त ने उन्हें कितना बदल दिया है। कहीं ना कहीं करिश्मा को अमन याद आने लगा। जब अमन शुरू में बहुत अड़ियल और ज़िद्दी था तो करिश्मा को उसमें अमरेंद्र जी की झलक दिखाई देती थी। अमरेंद्र जी भी अपनी जवानी में बिल्कुल अड़ियल और निडर किस्म के इंसान थे। करिश्मा की शादी दादा महाराज और करिश्मा के पिता की रजामंदी से हुई थी, लेकिन शादी से पहले ही